نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة تحریم کی آیت نمبر 6 تھی یہ, جس کا ترجمہ ہے یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, قو انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, و اہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, نارن, آگ سے. یہ ایک مقام قرآن پاک میں ایسا ہے جس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کیا, کو بچاؤ. جب بچاؤ کسی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو بچو, تو کوئی اس کا مطلب ہے خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کون سی چیز ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ بچو؟ کو انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, اور کس کو؟ وہ اہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو. کس سے؟ نارن, آگ سے. آگ سے بچاؤ. اب ہم سوچتے ہیں کہ ایمان والے تو ہم ہیں, تو اب الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اب ہمیں تو آگ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آگ ہمارے لیے تھوڑی ہی ہے, آگ تو کافروں کے لیے. مگر اس مقام پہ قرآن پاک میں جب کہا گیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ, اس کا مطلب ایمان والے خطرے میں ہیں, اور ان کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ان کو اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کس سے؟ آگ سے. اور یہ کون سی آگ ہے؟ جو جہنم کی آگ ہے. اور یہ بچانا کوئی عام فقر و فاقے سے بچانے کی بات نہیں ہے, نہ کسی وائرس سے بچانے کی بات ہے, نہ کسی ایسی اور کوئی دنیاوی مالی مشکلات, بیماریاں, ان چیزوں سے بچانے کی بات ہے. یہ وہ آگ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو آگ ایسا جلائے گی کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى, کہ نہ پھر لوگ اس کے اندر مریں گے اور نہ جئیں گے. وہ ایسی آگ ہے کہ جس سے بیفور ہینڈ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ خطرے میں, اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں پہ ابھی آگ آنے والی ہے, ساتھ والے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور ادھر کوئی آ رہی ہے, تو آپ سوچیں کہ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہو, اور جو اس کو بچانے والا بتانے والا ہو تو انسان کے دل میں اس کے لیے کتنی احسان مندی ہوگی کہ دیکھو اس نے مجھے بتایا ہے, اس نے مجھے وارن کیا ہے نا. انسان اس کو اپنا محسن کہے گا کہ شکر ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا, تم نے مجھے ایک بڑے خطرے سے بچا لیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کوئی انسان نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جیسے ہم اخباروں کی نیوز کے اوپر تو بہت بھروسہ کرتے ہیں, بہت یقین کرتے ہیں کہ آج یہ خبر ہوئی ہے تو ہم بالکل آنکھیں بند کر کے, ہم کو اعتماد ہے کہ یہ سچی بات ہے. مگر یہ قرآن سب سے سچی کتاب ہے, اس میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ بی ویئر, وارننگ ہے تمہارے لیے, اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو, ورنہ آگ ہے. تو ہم سب یہ سوچیں کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کلمہ پڑھ لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس منہ سے طوطے کی طرح بول دیا اور بس اس کے بعد آپ جنت میں داخل ہو گئے, بلکہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والے, جن کے دل میں ایمان ہے, ان کو بھی بچنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو بچانے کی ضرورت ہے. ورنہ انسان کے لیے وہ جگہ ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی. حالانکہ ویسے موت کو انسان کہتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو, کوئی مصیبت بہت ہی شدید ہو تو انسان کہتا ہے کہ اب موت آ جائے تاکہ یہ خلاصی ملے اس سے, لیکن وہاں پہ موت نہیں ہے اور زندگی تو ویسے ہی نہیں ہے. کیونکہ جب انسان, کوئی انسان جل رہا ہوگا ایسی آگ کے اندر جو اس دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ ہے, جو اس دنیا کی آگ کا ٹیمپریچر ہے اس سے ملٹی پلائی 69 ٹائمز اس کو کر لیں, تو اتنا ٹیمپریچر اس آگ کا ہے, اب اس آگ کے اندر کیا زندگی ہوگی جس کے اندر انسان پڑا رہے. ابھی پچھلے دنوں ایک میری دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا ہاتھ جل گیا, کچھ ڈال رہی تھی تو تیل اس کے ہاتھ پہ آ گیا, تو کہنے لگی وہ اتنا کھولتا ہوا تیل تھا کہ اس کے بعد کہتی میری چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی, کہ چیخ مارنے کی بھی جو انسان کی ایبلٹی تھی کہتی وہ بھی ختم ہو گئی, اور مجھے ایسا لگا کہ میرا دل بس بند ہونے لگا. तो कभी इंसान, हमें तो जैसे खवातीन है तो हमें तो ज्यादा इस चीज का अंदाजा होता है कि ये जो आग के साथ काम करना है वो कैसा होता है। अभी हम इसके करीब होते हैं तो तब भी हम, इंसान कहता है कि बहुत एहतियात से काम करें, कोई जरा सा भी छींटा नहीं पड़े, और एक छींटा भी पड़ जाए तो क्या हालत हो जाती है कि इंसान में ऐसा लगता है कि बस हर चीज जैसे खत्म हो गई है, और बंदा फौरन कहता है कि इसको मैं किसी तरह पानी के नीचे करता है, ठंडे पानी के नीचे कुछ लगाता है चीज को। ये सिर्फ 1 सेकंड का है छींटा, 1 सेकंड का, और ये अभी कोई कंपैरिजन नहीं है आखरत की आग के मुकाबले में, जिसके बारे में सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब वो जहन्नुम में एक तंग जगह पे ठूंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे, उस वक्त इनसे कहा जाएगा आज एक नहीं बहुत सारी मौतों को पुकारो, तो मौत पुकारते रहो, मांगते रहो अपने लिए मौत, मौत नहीं आएगी। क्योंकि मौत को क्या कर दिया जाएगा, जैसे हदीस में है कि क़यामत के रोज़ मौत को एक चित कुबरे मींडे की शक्ल में लाया जाएगा जन्नत और जहन्नुम के दरमियान, और उसको वहाँ पे खड़ा करके उसको ज़िबह किया जाएगा। यानी मौत को मौत आ गई, अब मौत कोई चीज़ है ही नहीं, ज़िंदगी जैसे एक चीज़ है इसी तरह मौत एक चीज़ है, तो जो मौत को जब ज़िबह कर दिया गया तो अब मौत एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्या है, इंसान जिस स्टेट में है वो उसी में रहेगा। इसी वजह से जन्नत वाले जब ये देखेंगे तो उनको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि अगर मौत होती तो वो खुशी से मर जाते, और जहन्नुम वाले ये जब देखेंगे तो उनको इतनी हसरत और इतना गम होगा कि अगर मौत होती तो वो इस गम में मर जाते कि अब तो मौत ही नहीं है और अब हमारा क्या होगा। जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा, क्योंकि आखरत में जैसे आप दुनिया में दरमियाने दरमियाने रहते हैं, दरमियाने दरमियाने चलते हैं, चाहते हैं कि हम बस दरमियाने ही रहें, इधर को भी वो और अपनी मर्जियां भी कुछ कर लें, कुछ अल्लाह की भी मान लें, कुछ अपनी भी मान लें, तो वहाँ पे दरमियाना कोई नहीं होगा, या तो जन्नत है या जहन्नुम है, एक ही जगह, और इंसान का ठिकाना इन्हीं दो में से कोई जगह होगा नहीं। तो अगर आपने कभी किसी को देखा हो किसी अस्पताल में जो इंसान जल जाते हैं, तो अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ उनकी चीखें सुनने का, तो उनका हाल ये होता है कि अगर कपड़ा भी टच कर जाए ना तो उससे भी उनकी चीख निकलती है। ये एक दफ़ा दुनिया की आग से जलने का हाल है कि उनकी चीखें और इनकी इनकी कराहतें ऐसी होती कि इंसान उनकी चीखें भी नहीं सुन सकता, और कहाँ वो आग के जिसमें इंसान पड़ा रहे। हम तो दुनिया की छोटी छोटी मुश्किल भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, सूखी रोटी मिल जाए तो हमें इतना गम होता है, गर्मियों में ठंडा पानी ना पीने को मिले तो तब हमें बहुत इतना अफसोस होता है कि हमारी अब ये हालत आ गई है। या फिर हमें कोई ऐसे हालात दुनिया में कोई छोटी बहुत मुसीबत या बीमारी आ जाए तो उसके ऊपर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उस गम को जो जहन्नुम का अजाब है और जो वहाँ पर गम होगा उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते। तो सबसे पहले कहा गया, सबसे पहले अपने आप को इससे बचाओ, और अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया इन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे, जब उनके बदन की खाल जल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखें, चखते रहें वो मज़ा, एक खाल के बाद दूसरी खाल आ जाए करें ताकि उनके अजाब में कभी भी कमी ना आए। ऐसा अजाब होगा जहन्नुम का जो ख़त्म ना होने वाला अजाब है। उससे कहा गया कू अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो, ऐसे अजाब से खुद को बचाओ और फिर उसके बाद अपने घर वालों को बचाओ। हम जब अक्सर बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे बच्चे बस ठीक हो जाए, हम तो अब जैसे तैसे हैं, अब हमारा तो छोड़ो, बस हमारे बच्चों पर वर्क किया जाए। तो बात यह है कि पहले कुरान में कहा गया अपने आप को बचाओ, बाद में बच्चों की फिक्र है, बाद में घर वालों की फिक्र है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बच जाएं, मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखें आपके बच्चे कभी नहीं बच सकते इस तरह से। क्यों? इसलिए कि जब वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने रब के नाफरमान हैं, तो वो फरमाबरदार कैसे बन जाएंगे, वो अल्लाह की फरमाबरदारी कैसे करेंगे। आप ही तो रोल मॉडल हैं। और फिर ये देखें कि जब तक आप खुद को नहीं बचा लेते आप उनको बचा ही नहीं सकते। ऐसे ही है जैसे आप जहाज में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि पहले अपनी सीट बेल्ट बांधो, और अगर कोई ऐसी हालत आ जाए, हंगामी हालत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो पहले हमेशा कहते हैं ना पहले अपने आप को ये लगाओ जो एयर के लिए जो क्या चीज़ होती है वो मास्क ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद पुल करो दूसरे के लिए, चाहे बच्चा बैठा हुआ चाहे कोई बड़ा, पहले खुद को बचाओ। क्योंकि आप बच्चे होंगे तो किसी और को बचा सकते हैं ना, आप खुद ही नहीं बचे हुए, तो आप कह रहे हैं हाँ बच्चों को सही कर दें, हाँ मेरे फलाने को, आप में कैसे, मैं तो कोई जादू मंत्र नहीं है मेरे पास कि मैं उनके ऊपर फूंक दूं तो वो सही हो जाएंगे। आप रोल मॉडल हैं, आप सही होंगे तो आगे आपकी नस्लें सही होंगी। अगर आप अपने ऊपर नहीं जबर कर सकते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इनको इस एज के अंदर कंट्रोल किया जा सकता, जब आप अपने आप के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते, अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, मगर आप चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और हमारे बच्चे सही हो जाए। ऐसा नहीं होता। अपने आप को पहले बचाओ, पहले अपनी फिक्र करो। तो एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम के जो दोजख है इसके 7 दर्जे हैं, और उनमें से जैसे आपको मालूम है एक किसी दर्जे के अंदर मुशरिकीन जाएंगे, किसी में ईसाई जाएंगे, किसी में यहूदी जाएंगे, किसी में साबी जाएंगे, किसी में मुनाफिक जाएंगे, और फिर सबसे ऊपर वाले दर्जे, जब सारे दर्जे गिनवा दिए तो फिर फरमाया और सबसे ऊपर जो दर्जा है ना जिसमें कम हीट है, सबसे नीचे वाले में तो सबसे ज़्यादा है जिसमें मुनाफिकीन होंगे और बीच में सारे बाकी लोग हैं, और सबसे टॉप वाला जो है इसके अंदर, और फिर खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसमें कौन होंगे? फरमाया इसमें आपकी उम्मत के गुनाहगार होंगे जो तौबा किए बगैर दुनिया से चले गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम हुआ कि आंसू बहने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत बंद कर दी, किसी से बातचीत नहीं करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए, हज़रत उमर गए, हज़रत सलमान फारसी गए, किसी से नहीं मिलते थे। फिर उन्होंने हज़रत फ़ातिमा से सिफारिश की कि आप जाएँ और आप जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें और उनसे पूछें कि क्या बात हो गई है कि आपकी ये हालत हो गई है, बस कमरे मतलब अपने घर में बंद हो गए थे, नमाज के लिए सिर्फ जाते थे। तो वो गई और उन्होंने दस्तक दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, तो आपने उनको आने की इजाज़त दी। उन्होंने पूछा कि आपको क्या बात हुई है, आप क्यों इस कदर गमगीन हैं? फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत का गम है कि मेरी उम्मत के वो लोग जो तौबा किए बगैर दुनिया से चले जाएंगे नाफरमानियाँ करते हुए, वो जहन्नुम की आग में दाखिल होंगे। क्योंकि वो जानते ज़्यादा थे इसलिए डरते भी बहुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जानता हूँ और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला। जो जितना ज़्यादा अपने रब को जानता होगा वो उतना ही ज़्यादा खौफ खाएगा, डरेगा उसके अजाबों से, और जो जितना ज़्यादा उसको से वाकिफ नहीं होगा वो उतना ही ज़्यादा ना डर होगा। और आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में किसको देखा था मालूम है आपको? औरतों को, सबसे ज़्यादा औरतों को देखा था। और ये चीज़ और ज़्यादा डरा देती है कि औरतें वहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, इसका मतलब है कि औरतें कोई तो ऐसे काम करती हैं कि वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये तो अब एक अलग से एक दर्स इसके ऊपर हो सकता है कि औरतों की कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा थी जहन्नुम में, मगर इस वक्त चूँकि ये टॉपिक नहीं है तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि औरतों को सर की चोटी से पकड़ के और फरिश्ते घसीट के लेकर जाएंगे जहन्नुम की आग। उस वक़्त जब जहन्नुम की तरफ उनको ले जाया जाएगा तो उस वक़्त जो ईमान वाले होंगे वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जहन्नुम की आग एकदम पीछे हो जाएगी। फिर वो उनको पकड़ने लगेगी तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर आग पीछे हो जाएगी। तो वो जहन्नुम का दारोगा मालिक कहेगा कि पकड़ती क्यों नहीं है इसको, तो वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा जोर नहीं है। तब इनकी जुबानें बंद की जाएंगी, तब जहन्नुम की आग इनको पकड़ सकेगी। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि जो वो कलमा कि जो ये जिस दिल के अंदर हो, जिस जुबान के ऊपर हो, तो उसके लिए तो जहन्नुम की आग तो हराम है। लेकिन इन लोगों ने इस कलमे की लाज नहीं रखी दुनिया में, इसके ऊपर नहीं चले। इसीलिए जो मुसलमान जहन्नुम के अंदर जाएंगे तो अल्लाह ताला जहन्नुम की आग को ये हुक्म देंगे कि सजदे की जो जगह है इनको ना जलाया जाए, इस तरह इनको हथकड़ियाँ ना पहनाई जाएँ क्योंकि इन हाथों ने सदका किया है, इनके पाँवों में बेड़ियाँ ना पहनाई जाएँ क्योंकि इन पाँवों ने तवाफ़ किए हैं, मगर बाकी जिस्म को तो आग जलाएगी। दिल को ना जलाया जाए, इसमें ईमान था, मगर बाज़ गुनाह ऐसे किए होंगे, मसलन कत्ल किए हैं किसी ने, मसलन है कि किसी ने रियाकारी की है, तकब्बुर किया है, वालदैन की नाफरमानी की है, रिश्तेदारों के साथ बुरा किया है, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिनके ऊपर जहन्नुम की वईद है। तो उन्होंने वो गुनाह किए होंगे जिसके ऐसे मुसलमान होते हुए भी वो जहन्नुम में जाएंगे, शराब पी हुई है मसलन। इसी तरह एक जगह में पढ़ी थी कि जो ये पसंद करता है कि उसके लिए लोग खड़े हो जाएं, उसके बारे में भी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद दिया कि वो जहन्नुम में जाएगा, कि जिसको पसंद हो कि जब मैं एंटर हूँ तो सारे खड़े हो जाए मेरे लिए, ऐसे कई बड़े बड़े सदर और वो पसंद करते हैं ना कि हमारे लिए सब ऐसे चाको चौबंद खड़े हो जाए रिस्पेक्ट में हमारी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ऐसा नहीं हुआ था, सहाबा करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये नहीं करते थे, लेकिन हम पसंद करते हैं और इसके अंदर हमारी बहुत, हमें हमारी अना की तस्कीन होती है। तो बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जो मुसलमान करते हैं, और आप कई देखते भी हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ ये फलां नमाजी भी है, इतना सदका भी करता है, लेकिन ये काम करता है, तो ऐसे लोग फिर जहन्नुम में होंगे अगर बगैर तौबा किए दुनिया से चले गए। तो वो मुसीबत ऐसी है, उस दिन की परेशानियों से बचाने के लिए खुद को कहा गया, वो ऐसी मुसीबत है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दुनिया की मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं, इसके गम ख़त्म होने वाले हैं, जैसे ज़िंदगी ख़त्म होगी दुनिया की मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी ख़त्म होगी यहाँ की परेशानियाँ ख़त्म, मौत के आते ही दुनिया की तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, बिजली का बिल दिया या नहीं, या घर का क्या बना, कौन सी मेंटेनेंस, कौन से मसले मसाइल, खाने पीने रोज़गार के मसले, सब ख़त्म हो जाएंगे। मगर जो वहाँ का गम है, जो वहाँ की परेशानी, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन उसकी हमें लीस्ट परवाह है, लीस्ट फिक्र है, हम उसकी कभी फिक्र नहीं करते। उस तरह से जैसे कि हम दुनिया की परेशानियों की फिक्र करते हैं कि जो हमें रात को सोने नहीं देती, लेकिन क्या हमें आग की भी इस कदर फिक्र है, परेशानी है? तो वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो अजाब है उसमें पल भर की भी कमी होने वाली नहीं है, और उसके बारे में कहा गया वो चिमट जाने वाला अजाब है, जिसमें इंसान का खाना क्या होगा, जकूम और कांटेदार घास, जिससे ना भूख मिटेगी और ना ही कोई एनर्जी आएगी, वो इट्सेल्फ अजाब होगा। इसी तरह पीने के लिए कौन सा पानी होगा, ऐसा खौलता हुआ पानी होगा कि जब इंसान उसकी तरफ देखेगा ही तो उसकी खाल चेहरे की उतर के उसमें गिर जाएगी, और जब पिएगा तो उसकी आंते कट जाएंगी और उसकी पीठ के रास्ते निकल जाएंगे। तो अब आप सोचें कि वो पता नहीं, पानी तो जाहिर है नहीं हो सकता, इसमें से आ रही है स्टार फाइव। तो जो इसका मतलब है कि क्यों पानी जो होता है, अगर आप पानी को रखें इस पे चूल्हे के ऊपर, तो आपकी ये दुनिया की आग से ही पानी वेपरेट हो जाता है, पानी तो रहता ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि पानी उस आग के अंदर इतने टेम्परेचर पे क्या रह सकता है? इसका मतलब वो पानी नहीं है, ये जो H2O है ये नहीं है, मे भी कोई धात है जिसको पिघलाया गया है। स्टील मिल्स वगैरह में आप देखते हैं कितनी हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको स्टील को वो किया जाता है, बिल्कुल पानी बन, शीशा है मे बी कि जो अंदर काट दे, शीशे को पिघला के वो उनको पिलाया जा रहा है। तो जो लोग दुनिया की मुश्किलें नहीं सह सकते, आखरत की मुश्किलें सह सकते, आखरत के अजाब सह सकते, इसीलिए सहाबा का तो ये हाल हो जाता था कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब ये आयत सुनी थी ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो वो खाना पीना छोड़ के, खाना पीना बंद हो गया था और वीरानों में चले गए थे, 3 दिन हो गए थे, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उनको बुला भेजा और उनसे पूछा कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपका यह हाल हो गया। तो उन्होंने इसी आयत का जब हवाला दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान तो वो है जिसकी जन्नत भी चाहत करती है, जन्नत इसके लिए दुआएं करती है कि ये मेरे पास आ जाए, जिसकी जन्नत चाहत करे उसका ये हाल है कि वो इस जहन्नुम के खौफ से वीरानों में जाके रोए, और जिनको पता ही नहीं है कि उनके लिए जन्नत है या जहन्नुम है वो बेफिक्र है, उनको परवाह नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि आगे क्या है। हमारी देखें कितनी गफलत है ना, आज हम गफलत में पड़े हुए हैं, उठते नहीं हैं, सो रहे हैं। सोया हुआ इंसान कैसे होता है? हम कहते हैं अगर हमें कुछ ज़्यादा पता चल गया ना तो फिर कहीं अमल ना करना पड़ जाए, इसलिए बस दूर दूर ही रहो इससे। सोए में ना गफलत में, तो जो सोया हुआ इंसान होता है उसको लाइट अच्छी नहीं लगती, वो कहता है मुझे सोने दो। जितनी गहरी नींद हम सोए हुए, हमें नहीं दिल चाहता कि कोई हमें जगाए, वो अगर हम जाग गए तो उठना पड़ेगा, देखेंगे इधर उधर, कई काम नज़र आएंगे, तो सोए रहो। जो कामों से बचना चाहता है सोया रहता है ना, हम अमल से बचना चाहते हैं इसलिए हम एक गफलत की नींद में सोए पड़े। और उससे उठना चाहते ही नहीं है, या हमें कुछ करना ना पड़े, ना हम जानेंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को बचा लो, इसलिए कि सबसे पहले जिस चीज़ की इंसान को, अगर अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाए, इंसान को सबसे पहले जिस चीज़ की परवाह होती है, एक अपनी जान की और एक अपने बच्चों की। बंदा कहता है जाए जेवर सोना पैसे जाए बेशक जले आग में, लेकिन मेरे बच्चे मेरी फैमिली, मैं इनको बस निकाल लूँ आग से। इसीलिए कहा गया इनको बचाओ। और अंबियाए कराम इस कदर फिक्रमंद होते थे अपने औलाद की इखलाक ईमान उनकी, के हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो ये किस ईमान पे रहेंगे, कि जब याकूब अलैहिस्सलाम डेथ बेड पे थे उस वक़्त उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया था और पूछा था उनसे कि मेरे बाद तुम किस दीन पे रहोगे, मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे। इतना उनको ज़्यादा इस चीज़ का खौफ था कि कहीं ये ना हो कि मेरे बाद ये किसी और की इबादत करने लगे। डेथ बेड पे भी ये पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे मेरे बाद जो कारोबार छोड़ा है वो कौन संभालेगा, फलां ज़मीन का टुकड़ा फलां ले ले, फलां चीज़ वहाँ ले ले, मैंने फलां ख़जाना वहाँ रखा है फलां ले ले। नहीं, उनको परवाह इस चीज़ की थी हमारे बाद कहीं ये ईमान से हट नहीं जाए, दीन पे चलने वाले। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जितनी जगह पे आप आयतें पढ़ें, ये आपको जन्नत और जहन्नुम का कंपैरिजन नज़र आएगा और आपको ख़ुद पता चलेगा कि जन्नत और जहन्नुम में कितना फ़र्क है। वो ऐसी नहीं है जगह कि चलो अगर मसलन किसी को महल ना मिला तो चलो झोंपड़ी सही, ऐसे ही कहते ना हम, चलो रहना ही है क्या है, चलो बड़ी चीज़ नहीं मिली छोटी चीज़ मिली, नहीं दोनों में बहुत फ़र्क है। और अल्लाह ताला ने इस फ़र्क को वाज़े किया कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत वाले और जहन्नुम वाले बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि जन्नत वाले कामयाब लोग हैं, दोनों बराबर नहीं हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। और इनके अंजाम जैसे डिफरेंट हैं ना, इसी तरह दुनिया में इनकी ज़िंदगियां भी डिफरेंट होंगी। जो जन्नत की तरफ जाने वाले हैं उसकी सोच, उसकी दौड़, उसकी कोशिश, उसकी मेहनत सब उससे डिफरेंट है जो जहन्नुम की तरफ जा रहा है। जो जहन्नुम की तरफ जाने वाला है उसकी फिक्रें बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी दिन की रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो जन्नत की तरफ जा रहा है। दुनिया में आपको फ़र्क पता चल जाते हैं, वहाँ पे कोई इंसान का एकदम अचानक रिजल्ट नहीं होगा कि आप कहेंगे हाँ ये तो हमें पता ही नहीं था, हम तो कुछ और सोचे आए थे, यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया ना, एक्सपेक्टेड ही होगा। हर एक इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है और हर एक इंसान को पता है कि उसकी कितनी तैयारी आखिरत के लिए, तो हर एक इंसान जानता है। तो दुनिया में भी इनके रास्ते अलग हैं और आखिरत में तो इनके रास्ते अलग होंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बलद में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फलकतहम अलअक़बा वमा अदराका मलअक़बा, और तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या पता अक़बा क्या है। पहले फरमाया फलकतहम अलअक़बा, इससे ना हो सका कि घाटी में एंटर हो जाए, घाटी बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि जन्नत जो है ना, लेकिन जन्नत ऊंचाई पे है, ठीक है, और ऊंचाई पे चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्लाइम करना पड़ता है, आपको इतनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, इतनी डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए कि आप चढ़ते रहें, आपने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे आपका सांस फूले कुछ भी हो आप चढ़ते चले जाते हैं तभी पहुँचते हैं ना ऊँचाई पर। तो जन्नत ऊपर है उसके लिए चढ़ना पड़ेगा, और जहन्नुम जो है वो नीचे है, उसके नीचे जाने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता, एक पैर ही स्लिप हो आप नीचे पहुँच गए। ये है जन्नत और जहन्नुम के रास्ते, जहन्नुम का रास्ता तो बड़ा आसान है, एक पैर फिसला और जहन्नुम में गए, लेकिन जन्नत का रास्ता बहुत मुश्किल है, उसके लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। एक घाटी है, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें क्या पता वो घाटी क्या है, फ़क्कू रक़बा, किसी गर्दन को आज़ाद करना, और इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, भूख वाले दिन खाना खिलाना, जिस दिन तुम्हें खुद भी ज़रूरत हो उस दिन तुमने किसी और को खाना खिला दिया, किसी गर्दन को आज़ाद कर दिया यानी किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया, या कोई कर्ज़दार है तो उसको आज़ाद कराना। कितने मुश्किल काम है ना ये करने पड़ते हैं जन्नत में जाने के लिए। यतीमन ज़ा मक़रबा, और यतीम जो रिश्तेदार भी है उसको देना, उसको देना कितना मुश्किल है। बाहर के यतीम को आप दे देंगे, अपने रिश्तेदार यतीम जो है वो आपका ना कभी बात सुनते ना एहसान मानते ना थैंक यू बोलते हैं, आप आगे पीछे गिले शिकवे भी करते रहते हैं, उनको देना बहुत मुश्किल है। फिर औ मिस्कीन अंजा मतरबा, या मिस्कीन जो मट्टी में रुला हुआ है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको दिया भी तो कल कोई ना कोई इससे वापस लेने का या कोई इससे किसी खैर की आपको कोई तवक्को नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज्यादा गया गुजरा है बेचारा, उसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर है कि उससे कोई फैज नहीं आपको मिलेगा उसको देना। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन यही लोग हैं फिर जिनके दाएं हाथ में नामा आमाल पकड़ाया जाएगा, और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफर किया ये बाएं हाथ में नामा आमाल दिए जाएंगे, इन्हीं पर आग है चारों तरफ से घेरी हुई, इनको चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। तो ये अकाबा जो है ना, घाटी चढ़ना, घाटी में दाखिल होना, चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, जन्नत पाना आसान नहीं है। इसीलिए फरमा दिया कि देखो जन्नत वाले और जहन्नुम वाले बराबर हैं ही, दोनों के रास्ते भी डिफरेंट हैं, दोनों का अंजाम भी डिफरेंट है। आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स देख लें, आप अपना टाइम देख लें, आप अपनी सलाहियतें देख लें, किस चीज़ में गुजरती हैं। और स्पेशली औरतें जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक तुम में से जिम्मेदार है, राई है, और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, जो उसके अंडर है उनके बारे में पूछा जाएगा। अब मर्द हैं उनके ऑफिस में हैं, कहीं जॉब्स भी, कहीं कारोबार में हैं, कहीं और घर में भी उसके बीवी बच्चे जो उसके अंडर हैं, उसके हाथ तले हैं ना, उनके बारे में उससे सवाल होगा, और औरत से उसके शौहर के घर के बारे में और उसकी औलाद के बारे में सवाल होगा। ये औरत से सवालात किए जाएंगे कि तुम इनकी जिम्मेदार थी, तुम्हें इन पे निगरान बनाया गया था। हाँ ठीक है, आप बाकी अहली को में बाकी भी लोग आ जाते हैं, आपके खानदान के और लोग भी हैं, वो भी आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आप बाकी लोगों को भी कहें, मगर स्पेशली जो आपकी औलाद है वो आपके अंडर है। अब हमारा डंडा कहाँ चलता है? हस्बैंड पे, हस्बैंड सही हो जाए, हस्बैंड सही हो, हस्बैंड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो उनकी वालदा से पूछा जाएगा, आपसे आपके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। तो आप अपना जोर अपने बच्चों पर चलाएं ना, हम उलट जगह पर करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हाँ कहना तो हर एक को ही हमारे लिए ज़रूरी है, हर एक को बुराई से मना करना, भलाई की तरफ दावत देना, वो तो हर एक को करना है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो कौन है? औलाद। उनकी पूछ होगी हमसे और हमारे घरों की कि हमने इसमें माल कैसे खर्च किया, या अपनी इज्जत के ऊपर तो कोई हर्फ नहीं आने दिया, ये हमसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में हर एक निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, और औरत अपने शौहर के घर की निगरान है और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सिर्फ खुद ही को नहीं बचाना, अपने घर वालों को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, और यही हकीकी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत किस चीज़ से हम शो करते हैं? हम मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं तो हम ये शो करते हैं कि हमने इनको बहुत अच्छा पहनने को दे दिया, बहुत अच्छा खाने को दे दिया, अच्छे जगह एजुकेशन के लिए इनको स्कूल्स अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ तालीम देना तो ये काम नहीं है। इनकी जो आखरत के लिए तैयारी है कि मेरे बच्चे को आग ना छू जाए, क्या इसकी फिक्र है? क्या इसके लिए भी तैयार करते हैं उनको कि मेरा बच्चा आग से बच जाए? माँ बाप की मोहब्बत किस चीज़ में होती है? कंफर्ट्स देने में। हालांकि असल आपकी मोहब्बत का टेस्ट ये है कि आप उसको कितना आग से बचाना चाहती हैं, कितनी आपके अंदर ये कोशिश है कि मेरा बच्चा इस रास्ते पर ना जाए अल्लाह की नाफरमानी के, वरना इसके आगे आग है। और अगर आप खुद समझदार हैं और अगर आप खुद दीन पढ़ने वाले और समझने वाले, और फिर भी आप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है जिस मर्जी रास्ते पर जाए कोई बात नहीं, बस दुनिया इसकी बन जाए, आखिरत की कोई बात नहीं, तो इसका मतलब आपको हकीकी मोहब्बत नहीं है अपनी औलाद, या फिर आपको समझ नहीं। तो हकीकी मोहब्बत का तकाजा यही है कि इंसान अपनी औलाद को आग से बचाने के लिए कोशिश करे। और इसके लिए कैसे इंसान कोशिश कर सकता है कि जब वो खुद भी दीन समझे और खुद भी उसके ऊपर अमल करे और अपनी औलाद को भी इसी की तलकीन करे। क्योंकि जब इंसान को इल्म आता है ना तो फिर यकीन आता है। आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है तो यकीन कैसे आएगा? आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, देखें एक चीज़ होती है ना कि मसलन एक इंसान है जिसने किसी सिचुएशन में पढ़ के उसको जाना, कोई आग में जलेगा तो तब तो उसको पता चलेगा ये आग है, ये तो है बिल्कुल हक्कुल यकीन, ये तो है बिल्कुल 100% उसको यकीन आ गया कि ये आग ही। दूसरा एक इंसान है वो उसको देखता है तो उसको भी यकीन आया, वो आइनुल यकीन है। और एक इंसान है वो घर बैठे उसको किसी जगह उसने पढ़ लिया, ये है इल्मुल यकीन, ये सबसे कमतर दर्जा है। मगर इससे भी अगला लेवल क्या है, आंखों से देख लेना, और उससे भी आगे अगला लेवल क्या है, उस सिचुएशन में पढ़ के उसको जानना। तो अल्लाह ना करे कि हम उस सिचुएशन में पढ़ के उसका यकीन करें, या उस आग को देख के उसका यकीन करें। हमें इल्मुल यकीन करना है, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ने जो बातें बता दी हैं इसी को हक समझ के और इसके ऊपर यकीन करना है। ये है इल्मुल यकीन। और अगर आज इल्मुल यकीन नहीं किया तो फिर कल आइनुल यकीन और हक्कुल यकीन तो हो जाएगा। अगर आज इसको सच नहीं माना, और जब आप इल्म ले लेते हैं और फिर आपको यकीन हो जाता है, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, फिर आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, फिर आपके दिन की रूटीन चेंज हो जाती है, फिर आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, फिर आप जिस तरह से पहले काम करते थे, जो पहले आपके मामलात थे लोगों के साथ, वो ही बदल जाते हैं। आपके दिन और रात बदल जाते हैं, आपकी बातचीत बदल जाती है, फिर आप वैसे नहीं रहते, फिर आपको फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता, फिर आप कहते हैं मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने घर वालों को बचाना है, मेरे पास वक्त नहीं है इसका, फिर आप फालतू कामों में नहीं पड़ते। जिसके घर में आग लगी है वो ये थोड़ी कहेगा कि अब मैं मेकअप करूँगी या मैं कुकिंग करूँगी, वो तो कहेगा बचाओ अपने आप को, वो कोई फ़ोनों पर गपशप तो नहीं मारेगी ना। नहीं, ये तो दुनिया की आग की बात है। तो बात यह है कि जब इंसान को यकीन हो जाता है ना कि आखरत की आग है जिससे मुझे अपने आप को बचाना है, तो वो इस दुनिया में अपना वक्त नहीं ज़ाया करता, फिर वो बेकार कामों में नहीं लगा रहता। उसके सारी ज़िंदगी ये कोशिश होती है कि मेरे से कोई ऐसा नेकी का काम हाथ से ना निकल जाए, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे जमा करना है। जैसे किसी ने कोई बड़ी चीज़ लेनी हो, कोई घर लेना हो, वो एक एक पैसा जमा करता है ये कल को काम आएगा, इसी तरह ये एक एक लम्हे को सेव करता है। और आपका एक एक लम्हा सेव तभी होता है जब आप उस लम्हे में अपनी आखरत बनाने के लिए कोई काम कर लें, वरना वो वेस्ट है। आपका खाना पीना उसी से वक्त सेव होता है कि जब आप उस खाने को खुद भी जब खाते हैं तो उसको खा के कोई नेकी का काम करें या अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो वो सेव हो गया, वरना वो बेकार है। जिस खाने को खा के आप बस रंगलनियाँ ही मनाएं और मस्त रहें दुनिया के अंदर, वो कपड़ा सेव हो गया जो आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, बाकी तो वो सीधा होके यहाँ पे आप गार्बेज करते हैं, वो तो ख़त्म हो जाने वाले। इसी तरह वो वक्त सेव हो गया जो आपने अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया, वो सेव है, वो आपके बैंक में, वहाँ के बैंक में पड़ा, वो अकाउंट में पड़ा हुआ आपके, और बाकी सारा आपका वक्त ज़ाया है। तो जब इंसान को इल्म आता है और यकीन आता है तो फिर उसकी ज़िंदगी बदलती है। मगर हम यही नहीं चाहते कि हमें इल्म आए, क्योंकि हम ज़िंदगी बदलना नहीं चाहते। हालांकि जब इल्म आएगा तो अमल करना आसान हो जाएगा, और अल्लाह ताला खुद आपको ये हिम्मत दे देंगे कि आप अमल कर सकें। हम अमल से बचना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को जिस रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं उसी पे गुजारना चाहते हैं। हज़रत रबी थे रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी सारी रात जो थी ना वो पहलू बदलते हुए गुजरती थी। तो उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि पूरी सारी दुनिया सोती है और आप सोते नहीं हैं, क्या बात है, आप बेचैन रहते हैं। तो फरमाया था कि बेटा मुझे जहन्नुम की आग जो है सोने नहीं देती। तो उसका जो ख्याल है ना, जब इंसान के पास इल्म आता है, यकीन आता है, तो वो जहन्नुम की आग उसको रात को बेचैन करती है, फिर उसकी रात को भी आँख खुलती है तो वो कहता है या अल्लाह मुझे उस आग से बचा लेना, या अल्लाह मेरे बच्चों को उस आग से बचा लेना। जैसे कोई आग आ रही है हमारी तरफ और हमने उससे बचना, और अल्लाह ताला ही बचा सकता है। उससे दुआएँ करते हैं और मांगते हैं तौफीक कि अल्लाह हमें नेकी की तौफीक देना और बुराइयों से बचा लें ताकि मैं उस आग से बच जाऊं। फिर उनकी रातें ऐसे ही सोते हुए नहीं गुजर जाती, ये बस सोए और दिन के 10 बजे उठे और कोई होश नहीं, ना अपनी आखरत का कोई होश है, ना जहन्नुम से बचने का कोई होश है, ना अपने बच्चों को बचाने का कोई होश है। फिर वो इस तरह से नहीं पड़े रहते, फिर उनको नरम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती और वो बेचैन रहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक तेरे रब का अज़ाब है ही डरने के लायक, कि उससे डरा जाए। अल्लाह ताला के अज़ाब ऐसे हैं कि वाकई लोगों को उससे डरना चाहिए, और वो अज़ाब, वो आग ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया वकूदुहन नासु वल हिजारा, इसका ईंधन, इसका फ्यूल क्या है, इंसान और पत्थर है जिससे वो भड़केगी। आप दुनिया में यहाँ पे आग जलाते हैं तो उसके फ्यूल के लिए गैस है या कोई और चीज़ें, लेकिन उसके अंदर फ्यूल किस चीज़ से डाला जाएगा, इंसानों से। और पत्थरों की आग अगर आपने कभी देखी हो तो जो पत्थर की आग होती है ना, पत्थर से जलाई जाती, वो आग सबसे ज्यादा तेज होती है। लकड़ी और कोयले से जलाई जाने वाली आग से ज्यादा तेज होती है वो आग। उसका ईंधन ये इंसान बनेंगे। जब ईंधन इंसान होंगे तो आग बुझेगी नहीं, वो इंसान, वो आग भड़कती रहेगी। और उस आग को कभी उसके अंदर कमी आने लगेगी तो फौरन फरिश्ते उसको और भड़काते रहेंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ख्वाब में देखा था कि एक इंतहाई बदसूरत मकरू शक्ल का आदमी है और वो मुसलसल आग जला रहा है और उस आग के गिर दौड़ दौड़ के उसको भड़का रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम से पूछा, ये कौन है? तो फरमाया, ये जहन्नुम का दारोगा है, मालिक, जो जहन्नुम की आग भड़का रहा है और क्यामत तक इसी तरह भड़काता रहेगा। कि जहन्नुम की आग जो है ना, 1000 ईयर्स तक भड़काई गई तो वो बिल्कुल रेड हो गई, और उसके बाद 1000 ईयर्स तक भड़काई गई तो वो वाइट हो गई, जैसे स्मोकी वाइट होता है, और उसके बाद 1000 ईयर्स तक भड़काई गई तो अब वो सियाह काली हो चुकी है कि उसके अंदर हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा, इतनी वो सियाह है। उसका रंग ऐसा नहीं है जैसे रेड हो, इतनी काली सियाह वो है। और वो ऐसी जगह है कि जिसके बारे में फरिश्ते भी सोच के या उसका उसके बार उसको देख के उनके ये हाल है कि वो फरिश्ते जो जहन्नुम के ऊपर जिनकी ड्यूटी है वो इंतहाई सख्त गिर है। आपने देखा होगा कि ये जो जेल के होते हैं या जो पुलिस में लोग होते हैं वो ज़्यादातर उनके चेहरे ही ज़रा करख्त से हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका मुजरिमों के साथ मामला होता है ना। इसी तरह ये फरिश्ते ऐसे हैं कि उस आग को देख देख के वो इतने करख्त हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे वो फरिश्ते वहाँ पर मुकर्रर किए। और वो कभी नहीं हंसे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो आपने एक फरिश्ते को देखा कि जो बहुत ही ज़्यादा यानी सख्त जैसे कि करख्त था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने फरमाया, ये मालिक है, दारोगा जहन्नुम। अगर ये हंसता कभी तो आज हंसता आपको देख के, लेकिन ये आज भी नहीं हंसा, इतनी उनकी शक्लें सख्त हो चुकी हैं। और फिर ये अल्लाह ताला से इस कदर डरते हैं ये फरिश्ते कि इनके, जैसे कुरान पाक में फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनके रंग जो हैं अल्लाह के खौफ से पीले पड़ चुके हैं। ये फरिश्ते इतना डरते हैं। और ये कैसे फरिश्ते हैं जो इसके उस आग के ऊपर जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया अपने आप को बचा लो, ये कैसे फरिश्ते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अलैहा मलाइकतुन, इस आग के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इस आग को भड़काते हैं। कैसे हैं? गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये इंतहाई संग दिल है, बहुत सख्त हैं। इतने यानी इंसान सोचे कि जब वो किसी इंसान को अगर आप कहें कि किसी को पकड़ के आग में डाल दो तो वो चाहे जितना भी सख्त हो लेकिन एक दफ़ा उसके हाथ शायद कांप जाए या उसके दिल में कोई रहम आ जाए। ये फरिश्ते ऐसे हैं जैसे कोई रोबोट्स होते हैं, जैसे उनको हुक्म होगा वो वैसे ही करेंगे, रोबोट्स की तरह। उनके दिल में कोई रहम नहीं होगा कि हाँ ये बेचारे लोग हैं, ये जल रहे हैं, या नहीं, या वो अजाब में नरमी कर दें, नहीं, उनको जैसे अल्लाह ताला को हुक्म है वो वैसे ही करेंगे। सख्त बेरहम है और बहुत सख्त जान भी हैं, कुव्वत वाले भी हैं, थकेंगे नहीं अजाब देके। क्योंकि जब हम फरिश्तों का सोचते हैं ना तो हमारे जहन में क्या आता है? फरिश्ते एक बड़ी नूरानी मखलूक और बड़ी ठंडक और बहुत प्यारे, और हम जिस किसी को नेक भी देखते हैं तो हम सोचते हैं फरिश्ता सिफ्त, ऐसे कहते हैं ना। ये फरिश्ते वैसे नहीं हैं, ये जहन्नुम के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते हैं जो बेरहम है, किसी के साथ वो नरमी नहीं करेंगे। और उनको आप ना रिश्वत दे सकते हैं ना सिफारिश कर सकते हैं उनसे, क्योंकि लोग, जैसे कि एक हदीस में आता है कि लोग कई साल तक पुकारते रहेंगे जहन्नमी, उसके अंदर मालिक, ए मालिक, ए मालिक, जो जहन्नम के दारोगा का नाम है, उसको पुकारते जाएंगे लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। 40 साल के बाद वो जवाब देगा और उनसे पूछेगा क्या है, वो कहेंगे कि अपने रब से कहो कि ज़रा हमारा अजाब कम कर दे या हमें मौत ही दे दे। तो वो कहेगा कि तुम इसी जहन्नुम में अब पड़े रहो, फिर वो कहेगा मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अल्लाह ताला को पुकारेंगे, पुकारते रहेंगे, बहुत साल इसी तरह गुजर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला इनसे कहेंगे, इनसे इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे अल्लाह हमें यहाँ से निकाल, एक दफ़ा हमें यहाँ से निकाल दे। अल्लाह ताला कहेंगे दूर हो जाओ मेरे सामने से और इसमें पड़े रहो आप। और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही भूल जाएंगे जैसे कि वो दुनिया में उसको भूल गए थे। आए दुनिया में जिनको अल्लाह ताला नहीं याद आता, अल्लाह ताला उनको भी जहन्नम में डाल के इसी तरह भूल जाएंगे। आज तुम भूले हो, कल वो भूल जाए। वो तुम्हें आज नहीं भूला, अगर वो तुम्हें आज भूला होता तो तुम्हारा खाना पीना पहनना ओढ़ना, तुम्हारी सांसें जो चल रही हैं, ये उसके हुक्म पे चल रही है ना, कि उसकी तवज्जो है तुम पर, उसका रहम है तुम पे, उसकी शफकत है तुम पे। लेकिन उस दिन जब अल्लाह ताला तवज्जो हटा लेंगे, उसकी रहमत हट जाएगी, तो जो लोग जहन्नुम में पड़े होंगे वो वहीं पे रहेंगे, कभी निकल नहीं सकेंगे वहां से। तो वो पुकार पुकार के कहेंगे। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इसके बाद इनके होंठ बंद हो जाएंगे और सिवाय चीखो पुकार की आवाज के कुछ बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ उनकी चीखें होंगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो वो ऐसे संग दिल फरिश्ते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी ये सिफात, तीन सिफात उनकी यहाँ पे बताई हैं कि वो सख्त जान भी हैं, बेरहम भी हैं, और वो करते वही हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। तो फरिश्ते उनको उल्टा वहाँ पे डांटेंगे और कहेंगे कि क्या तुम्हें कोई दुनिया में बताने वाला नहीं आया था, किसी ने तुम्हें नसीहत नहीं की थी, किसी ने तुम्हें बताया नहीं था, समझाया नहीं था, क्या कोई रसूल तुम्हारे पास नहीं आया था कि आज जो तुम यहाँ पे पड़े हुए हो, किसी ने ना तुम्हें बताया कि ये आग जलाई गई है तुम्हारे लिए, तुम वहाँ पर बाज आ जाते। वो कहेंगे हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर तारी हो गई। और आपने पढ़ा है सूरह मुल्क में कि वो कहेंगे कि काश हम समझते, हम कोई अकल रखते या हम सुन ही लेते बात को, तो आज हमारा ये हशर ना होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम, ऐ काफिरो आज कोई उज़र माजरतें ना करो, क्योंकि उस दिन फिर लोग उज़र माजरतें करेंगे, एक्सक्यूजेस करेंगे। कोई कहेगा अल्लाह फ़लाँ ने मुझे गुमराह किया, फ़लाँ ने मुझे बहकाया, इसका कसूर है, फलां ये मेरा दोस्त था, इसने मुझे उल्टे रास्ते पर लगाया। और यूजुअली यही होता है ना, इंसान को इसी मुसीबत में फंस जाए तो उसके बाद इधर उधर पॉइंट आउट करने लगता है, फलां को ब्लेम, फलां को ब्लेम, अपना तो कसूर मानना नहीं, हम में भी कोई गलती थी। इंसान कहता है इसी ने ही मुझे बहकाया था। तो वो भी उस दिन यही कहेंगे, फलां फलां ने मुझे बहकाया था। और जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो वक्त ही नहीं मिला, हमें फुर्सत ही नहीं मिली, ना हमें नमाज की फुर्सत मिली, ना हमें कुरान की फुर्सत मिली, ना हमें सारी ज़िंदगी, तो हमें ये इतनी मसरूफियत रही, हमें सीखने की भी इस किताब को फुर्सत नहीं मिली, चाहे हमने और इतना इल्म भी ले लिया, इस किताब को सीखने की हमें फुर्सत ना मिली। हम तो बहुत ही बिजी रहे, क्या करते हमारे बच्चे थे, क्या करते हमारी ये मसरूफियात थी। कईयों के ऐसे एक्सक्यूजेस होंगे, हर बंदे अपने अपने एक्सक्यूज लेकर आया होगा ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आज कोई एक्सक्यूजेस नहीं तुम्हारे कबूल किए जाएंगे, इन्नमा तुज़ाउनमा कुंतुम तअमलून, आज तुम्हें वही जजा दी जाएगी जो कि तुम अमल करके लाए, कोई जुल्म नहीं किसी के ऊपर होगा, जो तुम्हारा अमल था उसी के मुताबिक तुम्हारी सजा है। तो जुल्म उस सूरत में होता कि जब इंसान को ना हक सजा दी जाती। अब इंसान जो अमल करके दुनिया से लेकर जाएगा, सजा उसी के मुताबिक होगी, किसी के प्रति बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला की तरफ तौबा कर लो और तौबतुन नसूह कर लो। तौबतुन नसूह कौन सी तौबा है? ऐसी तौबा कि जिसके जो खालिस तौबा हो, सच्ची तौबा जिसको कहते हैं। अगर ये कहा जाता सिर्फ तौबा कर लो वो भी काफ़ी था, लेकिन तौबतुन नसूह कौन सी तौबा है? ये वो तौबा है कि जैसे हज़रत अबू ज़र ने हज़रत उबई से पूछा कि तौबतुन नसूह क्या है, तो फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था, तो आपने फरमाया कसूर से गुनाह हो गया फिर इंसान इस पर शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे और फिर उस गुनाह की तरफ कभी ना जाए, ये है तौबतुन नसूह। जैसे हज़रत अली ने एक बंदे को देखा था जिसने गलती की और उसके बाद कह रहा तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, इस तरह की तस्बीह पढ़ता जा रहा है, तो फरमाया नहीं ये झूठी तौबा है, ये सच्ची तौबा नहीं है। क्योंकि सच्ची तौबा वो है कि जिसमें इंसान शर्मिंदा हो, जिसमें इंसान आइंदा उस चीज़ को उस गुनाह को ना करने का वादा करे अपने आप से, और अगर इंसान ने किसी का हक मारा हो तो उसका हक उसको दे दे, और इंसान जो अल्लाह ताला के हक में कमी कोताही की है तो इंसान कोशिश करे कि अब वैसी कमी कोताही ना हो कभी सारी ज़िंदगी, ये है सच्ची तौबा। अगर इंसान सिर्फ इस्तगफार की तस्बीहां पढ़ता रहे और फिर उस काम को भी जारी रखे कि मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, और उसी काम को करता चला जाए, तो ये तौबा तो नसूह नहीं है, ये सच्ची तौबा नहीं है, ये झूठी तौबा कर रहे हैं। जब आपके जहन में कोई वो, आप अपने आप को समझते ही नहीं कि मेरे से कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, और ना ही आपके जहन में कोई छोड़ने का इरादा है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगी, इस गुनाह को छोड़ दूंगी, तो ये कैसी तौबा है फिर? तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबतुन नसूह क्या है, जिसमें इंसान उस गुनाह के ऊपर नादिम भी हो, शर्मिंदा भी हो, कभी दोबारा उसको ना करे। इसी तरह एक और जगह पे आता है जो सही हदीस से हमें पता चलता है कि तौबतुन नसूह में ये शर्त भी है कि तौबा करने वाला मरते दम तक ये गुनाह ना करे। फिर जो मेरे से हो चुका, मरते दम तक अब मैं ये गुनाह ना करूँ। और ये भी एक जगह पे आता है कि फिर कभी ना करे, या फिर इतना पक्का उसका इरादा कर ले, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं इंसान लाशऊरी तौर पे कर जाता है, उसका उसने कोई सोचा नहीं होता, सोची समझे उससे नहीं होता, लाशऊरी तौर पे हो जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे अगर इंसान फिर से उसके ऊपर तौबा कर दे। मगर उसका अज़म ये होना चाहिए, पक्का इरादा ये हो कि मैंने नहीं करना, मैं अब कभी नहीं करूँगी। और याद रखेंगे, इंसान के साथ वादा करने के जैसा नहीं कि मैं आपसे वादा कर लूँ और मेरे दिल में ये हो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर से हो जाएगा तो फिर तौबा कर लूँगी। ये तो अल्लाह ताला के साथ मामला है ना, अल्लाह जानता है आपकी नियतों का हाल कि आपके दिल में कितना आपने पक्का इरादा किया, क्या वाकई आपने सच्ची तौबा की है, या ये झूठ मूठ का अल्लाह ताला के साथ ही कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, जो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को दे रहे हो। तो फरमाया कि तौबतुन नसूह करो, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरानकुम सय्यिआतिकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब बख्शिश कर देगा, माफ़ कर देगा तुम्हारे गुनाहों को, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और अल्लाह ताला तुम्हें दाखिल कर देगा ऐसी जन्नतों के अंदर जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। उम्मीद ये है, और अल्लाह ताला के लिए जब असा का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब तकरीबन यकीनी बात हो जाती है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा अगर तुम वाकई तौबतुन नसूह करते हो, सच्ची तौबा करते हो। तो सच्ची तौबा करके तुम जब पलट आए अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला अब तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, और देखो तुम्हें जन्नतों में भी दाखिल करेगा, और यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहु, उस दिन अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेंगे अपने नबी को और ईमान वालों को। रुसवाई आपकी कब होती है, कब बेइज्जती इंसान फील करता है? जब उसकी कोई बुराई किसी के सामने खुल जाए तब बेइज्जती फील करता है ना, कि मेरा ऐब दूसरों को पता चल गया, तब इंसान कहता है कि किसी को पता ना चले। तो अल्लाह ताला उस दिन क्या करेंगे, इनके गुनाहों को ढांप देंगे ताकि लोगों के सामने इनकी रुसवाई ना हो, जिन चीज़ों पर इन्होंने तौबा की हो अल्लाह ताला लोगों के सामने इनको एक्सपोज नहीं करेगा। वो देखेगा अपना नामा आमाल, कहेगा हाय इसके अंदर तो ये गुनाह है लिखे जो मैंने किए थे, तौबा कर ली थी लेकिन गुनाह स्टिल उसके नामा आमाल में हैं लिखे हुए। तो अल्लाह ताला उनको कवर कर देंगे फिर उस दिन, किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं अल्लाह ताला अफू व ना माफ़ करने वाला ऐसा है कि मिटा दे बिल्कुल, कुछ तो गुनाह बिल्कुल इरेज हो जाएंगे, उसके नामा आमाल में भी नहीं होंगे, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि वो देखेगा उसके नामा अमाल में होंगे लिखे हुए लेकिन अल्लाह ताला कवर कर देगा, उनकी सज़ा नहीं देगा, इसने उन पर भी तौबा कर ली थी। ये गफूर होना अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उस दिन अल्लाह ताला इनको रुसवाई से बचा लेगा, और नूरहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, और इनका नूर अल्लाह ताला इनको एक नूर दे देगा, इनके आमाल की वजह से इनको एक नूर मिलेगा, जो क्या होगा इनके आगे और इनके दाएं दाएं वो नूर चल रहा होगा। और ये नूर कैसा होगा इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जुनादा बिन अबू उमैया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारे नाम माँ वल्दियत और ख़ास निशानियों के अल्लाह के हाँ लिखे हुए, इसी तरह तुम्हारा ज़ाहिर बातिन अमल भी वहाँ लिखा हुआ है, क़यामत के दिन नाम लेके पुकारा जाएगा, ए फलां ये तुम्हारा नूर है, ए फलां ये तेरे लिए नूर है, हर एक के लिए नूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तकसीम होगा और उसको दिया जाएगा। और हज़रत दिहाक फरमाते हैं कि अव्वल तो हर शख्स को नूर अता होगा, लेकिन जब पुल सिरात पर जाएंगे तो फिर मुनाफिकों का नूर बुझने लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको हो जाएगी लेकिन जब पुल सिरात पे पहुंचेंगे वहां पे बिल्कुल अंधेरा होगा, पिच डार्कनेस, वहां पे सिर्फ ईमान वालों का नूर जो होगा वो सलामत रहेगा, मुकम्मल रहेगा, बाकी जो मुनाफिकीन होंगे उनका नूर कभी जलेगा कभी बुझेगा, और फिर उनका नूर ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। किसी को इतना ज़्यादा नूर मिलेगा कि जैसे हद्दे निगाह तक, बहुत दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह का नाम लिया था और फरमाया था वहाँ तक किसी को नूर मिलेगा, किसी को उससे कम, किसी को उससे कम, किसी को जिससे को सबसे कम मिलेगा उसको अपने पाँव के अंगूठे के आगे नूर मिलेगा, इतना सा नूर होगा सिर्फ उसका। और मुनाफिकीन का नूर तो वैसे ही बुझ जाएगा, मिला तो इनको भी नूर था, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में फरमाया क़यामत के दिन तू देखेगा कि ईमानदार मर्द औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दाएं दौड़ रहा होगा, जैसे जैसे चल रहे होंगे उनका नूर भी वैसे वैसे चल रहा होगा। ये ऐसे ही है जैसे स्पॉटलाइट होती है ना, आप देखते हैं स्टेज के ऊपर वो स्पॉटलाइट डालते हैं तो जिधर जिधर बंदा जाता है उसके साथ साथ स्पॉटलाइट भी होती है, इस तरह उनका नूर उनके साथ साथ उनके आगे आगे और उनके दाएं 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 तरफ, इसलिए कि उनके नामा आमाल थे इस तरह से। तो कहा जाएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं आज तुम्हें इन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है, ये है बेहतरीन कामयाबी। जिसको वाकई अल्लाह ताला जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दे उसको अल्लाह ने रुसवाई से बचा लिया, और वो होगा जो कामयाब है। असल कामयाबी ये नहीं है सिर्फ कि जन्नत में पहुँच जाए, असल कामयाबी ये है कि जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जहन्नुम की आग ना छुए। और इस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमानदारों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार तो करो, उस दिन उनका नूर तो बुझ जाएगा ना, उनके पास अब लाइट नहीं है, तो वो ईमान वालों को कहेंगे ठहरो ज़रा रुको, वेट वेट, हमारे लिए ज़रा वेट तो करो, क्योंकि उनके पास नूर है, हमारा नूर बुझ गया, हमारे पास लाइट नहीं है, अंधेरा होगा। और क्या क्या कहेंगे, हमारा इंतज़ार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें, हम भी कुछ ले लें। जवाब दिया जाएगा, वो उसको क्या कहेंगे मुनाफिकों को, कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। वो कहेंगे वो जाओ वहाँ पे पीछे ना, वहाँ पे नूर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जाओ वहाँ से लेकर आओ। वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और वापस यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, फिर इनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, एक दीवार आ चुकी होगी जिसमें वो उस तरफ होंगे और ये इस तरफ मुनाफिकीन। तो दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा होगा, जिसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी, जिधर को ईमान वाले जा चुके हैं उधर रहमत होगी, और बाहर की तरफ अजाब होगा जिधर मुनाफिकीन रह गए। ये चिल्ला चिल्ला कर इनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हम दुनिया में तुम्हारे साथ ही तो रहते थे, एक ही घर में रहते थे, हम बहन भाई थे, हम हमसाए थे, हम दोस्त थे, बहुत करीबी लोग होंगे। जो देखें इस दुनिया के अंदर सब मिक्स रहते हैं, कोई मुनाफिक है कोई मोमिन है, सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हो सकता है एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आज मिंगल्ड है, आज पता नहीं चल रहा। मगर जब वहाँ जाएंगे ना तो अब वहाँ पे इस जगह पे आके पता चलेगा, कुछ मुनाफिकीन तो पीछे ही रह जाएंगे, कुछ अब ये पुल सिरात पे जब जाने लगे हैं, जब लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गई और उनकी लाइट जब बंद हो जाएगी तब पता चलेगा अच्छा ये मुनाफिक थे और ये मोमिन थे। तब वो कहेंगे हमारा इंतज़ार करो, वेट करो, हमारा हमें थोड़ी सी रोशनी दे दो। वो कहेंगे जो पीछे से लेकर आओ ना, और जब वो पीछे उनको नहीं मिलेगी और वो वापस आएंगे तो देखेंगे कि वो तो आगे जा चुके, एक दीवार आ गई इन दोनों के दरमियान जिसमें एक दरवाज़ा है, इनकी तरफ इस तरफ अजाब है उस तरफ रहमत है। अब पता चला मुनाफिक कौन था और मोमिन कौन था। वो कहेंगे हाय ठहरो, हमारे लिए क्या हम और तुम एक साथ नहीं थे दुनिया में, हम तो साथ ही रहा करते थे, हम तो एक बाप की औलाद है या एक ख़ानदान से हैं या दोस्त थे। वो कहेंगे, अब उनकी बात बहुत नोट करने वाली है, वो कहेंगे हाँ थे तो सही, तुम हमारे साथ वाकई हुआ करते तो थे, लेकिन तुमने अपने आप को गुमराही में फंसा रखा था, तुम दुनिया में मिसगाइडेड थे, गलत रास्ते पर थे। ठीक है हम एक ही घर में रहते थे, बिल्कुल सही है, मियाँ बीवी भी हो सकते, लेकिन तुम गुमराही में पड़े हुए थे और इंतज़ार में ही रहे, तुम वेट ही करते रहे, अच्छा कल करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, चौथ करूँगी, अपने आप को बदल लूँगी, आखिर मैं कर ही लूँगी, तुम वेट करते रहे और शक शुबा करते रहे, पता नहीं होता भी है या नहीं, ये क़यामत आती भी है नहीं, छोड़ो कल कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, और तुम दिल में शक भी होता था पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, ऐसे ही कहते रहते, हमें डराते रहते हैं, और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा, तुम ड्रीम वर्ल्ड में ही रहे, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा यानी तुम्हारी मौत आ गई। तुम तो दुनिया में इसी इंतज़ार में रहे थे, कल कल परसों परसों, और तुम बस खाम ख्यालियों में रह के, हाँ मेरी तो बख्शिश हो जाएगी, मेरी तो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, तुमने अपने आप को बदला नहीं, तुम इंतज़ार करते रहे। तुम्हें धोखा देने वालों ने धोखे में ही रखा। मेरी दुनिया में धोखेबाज दोस्त थे ऐसे जिन्होंने गलत रास्ते पर रखा, और धोखेबाज शैतान तो था ही जिसने तुम्हें दुनिया के धोखे में ही रखा। आज तुमसे कोई फिदिया और कोई बदला कबूल ना किया जाएगा, और ना काफिरों से। तुम सब का ठिकाना दोजक है, वही तुम्हारा रफीक है और वो बुरा ठिकाना, ये इनसे कह दिया जाएगा। अगर जन्नत ना मिले और कोई और ठिकाना मिल जाए, फिर भी इंसान कहता है चलो कोई जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वहां तो जन्नत ना मिली तो ये जहन्नुम ठिकाना है। तो ये जब पुल सिरात पे से गुजरने लगेंगे और जब देखेंगे कि उनका नूर तो बुझने लगा हुआ, उनका नूर बुझ गया, अब हम, अगर हमारा नूर बुझ गया तो हम कैसे चलेंगे इस अंधेरे के अंदर? जिसके पास नूर होगा वही चल सकेगा। जैसे कि आपकी आंखें, आप अपनी आंखों से तो देखती हैं, लेकिन अंधे को आप दिखा नहीं सकती, आप तो नहीं दिखा सकती ना। आप अपनी आंखों से आप खुद ही फायदा उठा सकते हैं, इसी तरह आप अपने नूर से सिर्फ खुद फायदा उठा सकेंगे, किसी और को नहीं चला सकेंगे, वो तो पीछे रह गए। उनके और आपके दरमियान एक दीवार है लोग, अगर आप मोमिन हैं तो उस वक्त सब इस कदर डर जाएंगे कि बड़े बड़े पैगंबर भी बोलेंगे रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, तीन जगह पे कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब आयशा ने जब पूछा था आप वहाँ पे जाके हमें याद रखेंगे, जैसे हमें भी होता है कोई नेक हो या कोई कुछ हो तो हम सोचते हैं कि हाई वहाँ पे भी जाके हमें याद रखोगे जैसे आज हमारे साथ हो, तो उनके तो शौहर हैं, वो उनसे पूछती हैं कि आप हमें वहाँ पे याद रखेंगे? आपने फरमाया है आयशा तीन मौके पे कोई किसी को याद नहीं रखेगा। एक वो वक्त जब नामा आमाल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जब तक किसी को ये ना पता चल जाए कि उसके राइट हैंड में आ गया, उस वक्त तक किसी को नहीं होश होगी कि मेरे बच्चों का क्या हो रहा है और मेरे पेरेंट्स का क्या हो रहा है, मेरे किसका क्या हो रहा है, नो बडी वुड केयर। दूसरा, जब आमाल तोले जा रहे होंगे, नेकियां और बदलियां तुल रही होंगी, तराजू रखी गई होगी, जब तक इंसान को ये यकीन ना हो जाए कि मेरी नेकियां वजनी हो गई हैं, ज्यादा हो गई और मेरे गुनाह हल्के हो गए, उस वक्त तक किसी को किसी का होश नहीं होगा। जाहिर है जब उसका नाम लिया गया और आए आप आए, जरा आपका ये नामा आमाल तुलने लगा, जरा आप आए, इन लोगों में से निकल के आपको एक एंड से बुलाया जाए, आए आपकी यहाँ पे हाजिरी होने लगी और आपके नेकियां और बदियां तोली जाने लगी, तो इंसान को सोचे दुनिया में ही क्या हालत हो जाती है। दुनिया में किसी का रिजल्ट निकलने लगे और उसको इस तरह बाहर ला के खड़ा करा जाए और कहा जाए अभी आपका मीज़ान रखा जा रहा है, दुनिया के सारे ज़िंदगी के कच्चे छट्टे खुलने लगे हैं, क्या हालत हो जाए इंसान की। और जब हकदार भी अपने हक लेने के लिए खड़े हो जाएं, आ जाएं जिस जिसने जिस जिसका हक इसने देना वो भी आ जाए, और लोग निकलते आ रहे हैं, लाइनें लग गई हैं, और किसी को इसने मारा था, किसी को इसने ज़्यादती की थी, किसी किसने ज़मीन हथियाई थी, किसी के साथ इसने बुरा बोला था, किसी के साथ कितने लोगों के इसने हकूक दबाए थे जिनके हक इसने नहीं दिए थे। कई वालदैन खड़े हुए, कई बहन भाई खड़े हुए, कई रिश्तेदार खड़े हुए, कहीं कोई यतीम बच्चा खड़ा हुआ, तो ये सब लोग खड़े होंगे और अपने अपने हक मांग रहे होंगे, और इसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उनकी बुराइयां इसको दे दी जाएंगी, तो सब अपने हकूक मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। उस वक्त इंसान की हालत क्या रहेगी? वो किसी को होश होगा, उसको किसी के बारे में सोच सकता है वो? और तीसरी वो जगह होगी जब पुल सिरात पे से गुजरना होगा, उस वक्त किसी को किसी का होश नहीं होगा। यानी बड़े बड़े पैगंबर भी जब कह रहे होंगे कि हमें अल्लाह ताला बचा ले, क्योंकि पुल सिरात जो है यरहमुकल्लाह, पुल सिरात जो है वो जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा, उसकी पुश्त पे रखा जाएगा, उसके ऊपर से लोगों को क्रॉस करना है, जहन्नुम को क्रॉस करके जाना है। नीचे अगर एक आग भड़कने लगी हुई है और लोगों ने ऊपर से गुजरना, उस वक्त किसको किसका होश है, कौन कहाँ है? मैं तो गुजर जाऊँ पहले। उस वक्त वो अंधेरे घुप के अंदर नीचे जहन्नुम में, वो भी काली स्याह, और ऊपर ये पुल है, और उस वक्त उस जिसके पास नूर नहीं होगा, आप खुद सोच लें, एक नैरो बिल्कुल रोड। अब हमें इस तरह की इमेजिनेशन आती नहीं जब तक हम दुनिया में ज़रा नहीं कोई चीज़ को देखें, एक बिल्कुल पतली सी पगडंडी सी है, नीचे समंदर हो, चलो ये दुनिया का पानी का ही समंदर आप समझ लें, और उसके रोड के ऊपर से आपने गुजरना है अपनी गाड़ी लेके, और आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स भी नहीं है और अंधेरा घुप है, तो सोचें कि आपका क्या हाल हो। उस पुल से गुजरना होगा इंसान को, और उसमें अगर किसी के पास नूर ना हुआ, जिसके पास नूर होगा वो भी इतना घबरा रहा होगा। आप सोचें, लाइटें भी हैं गाड़ी की, तब भी आपको कितनी घबराहट होगी, इसके ऊपर से कैसे गुजरें, अल्लाह सलामती से गुजर जाए। क्योंकि लोगों को देख रहे होंगे वो कि वो लोग गिर गिर के अंदर पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आंकड़े होंगे, हुक्स होंगे उसके ऊपर, उस पुल के ऊपर जिसमें लोग फंस फंस के नीचे गिरने लगे हैं जहन्नुम में, और उनकी चीखों पुकार होगी। अब ऐसे में इंसान ये सोचे कि पता नहीं मैंने पार होना है या नहीं होना, ये आखिरी स्टेप होगा, इसके बाद आगे जन्नत है। अब इंसान सोचता है कि पता नहीं मैं पहुंच सकूं या नहीं पहुंच सकूं अगली तरफ। ऐसी हालत में किसको किसका होश रहेगा, हर कोई अपनी रोशनी लेके कहेगा रब्बना अतमिम लना नूरना, या अल्लाह हमारे इस नूर को मुकम्मल रखना कि हम दूसरी तरफ तक पहुंच जाए, हमारा नूर बीच में ना बुझ जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं इनका तो नूर बुझ गया, हमारे नूर को मुकम्मल रखना। वग़फिर लना, या अल्लाह हमारी बख्शिश कर देना, इन्नका अला कुल्ली शयइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है, या अल्लाह हमारे नूर को मुकम्मल कर दे, या अल्लाह हमारा नूर ना बुझ जाए। उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र होगी, उस वक्त किसी को किसी का होश नहीं रहेगा। तो ऐसे वक्त के लिए इंसान अपनी तैयारी करे, और ये कभी भी ना किसी को कहो, जैसे अब ये वेस्टर्न व्यू है कि दीन मेरा पर्सनल मामला है, मेरा प्राइवेट मामला है, मैं दीन पे चलूँ ना चलूँ तुम्हारा इसे कोई दखल अमल नहीं है। नहीं, इस आयत से पता चला जहाँ पे ये कहा गया कु अनफुसकुम व अहलीकुम, दीन किसी का पर्सनल मामला नहीं, हमने अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी। अब आपके जहन में आता होगा कैसे बचाएं, कितना कहें कितना ना कहें, बच्चों को ऐसे कहें तो ये कहेंगे वो कहेंगे। मैं आपको ये कहती हूँ कि देखें, अगर आपके घर में आग लग जाए, आप किसी से पूछेंगे कि बच्चे को मैं घसीट के पकड़ के लेके बाहर जाऊँ, या प्यार से उठाऊँ, या उसको कपड़ों से पकड़ूँ, या उसके बाजू से पकड़ूँ, ये तो नहीं आप किसी से पूछेंगे। ये तो खुद ही इंस्टिंक्ट आती है ना कि इंसान ने इसको बचाना है, ये कितनी हद तक आगे चला गया, मैंने इसको वापस लेकर आना है। क्या आप उसको बचाने के लिए किसी से पूछेंगे, किसी से तरीका पूछेंगे उस वक्त? नहीं, जब हम सब खतरे में, तो हमें खुद को भी बचाना है, अपनी औलादों को भी बचाना है। और वो हम हर एक माँ खुद समझ सकती है कि क्या कंडीशन है, उसके मुताबिक मैंने कैसे इसको लेकर चलना है। और हर मुसलमान मर्द और औरत को ये फिक्र करनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों आग से बचो, आप आग से बचने की फिक्र करो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करो, इसी से चाहे बचना पड़े, एक खजूर का टुकड़ा है ना, इसको सदका करके ही तुम आग से बच सको, तो एक खजूर का टुकड़ा ही सदका कर लो। लेकिन जो शख्स खजूर का टुकड़ा ना पाए, कोई इतना ही गरीब है उसके पास एक खजूर भी नहीं है कि जो सदका करके वो जहन्नुम की आग से बचे अपने लिए, यानी इंतजाम करे जहन्नुम की आग से बचने का, तो अच्छी बात ही कह दे, अच्छी बात कहकर ही अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाए। तुम कुछ भी नहीं सदका कर सकते, तुम बिल्कुल कंगाल हो, तो अच्छी बात ही बोल दिया करो कि तुम अपने लिए जहन्नुम से बचने के लिए कोई इंतजाम कर सको। और जो लोग अपने आप को इससे बचाने में कामयाब हो जाएं, उनके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कुरान पाक में, और जिसने अपने आप को भी बचा लिया अपने बच्चों को भी बचा लिया, तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। इंशाल्लाह ताला हम सूरह राद में ये पढ़ेंगे भी कि जन्नत आदन है, एक जन्नत की एक नाम है, जन्नत आदन है जिसमें ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादा जाएंगे और इनकी बीवियां और औलादों में से जो भी, एक ही शर्त है, नेकोकार विद फैमिली जा सकते हो तुम जन्नत में। ये शर्त क्या है, वो भी नेक हो, ऊपर के भी आपके जो पेरेंट्स हैं और नीचे जो औलाद है उनके साथ जा, क्योंकि इंसान का सबसे ज़्यादा करीबी यही रिश्ता होता है ना, पेरेंट्स और औलाद, इनके साथ तुम दाखिल हो सकते जन्नत में। मगर शर्त तुम्हारे लिए वो भी नेक हो, पेरेंट्स भी हों ईमान वाले और औलाद भी हो। हाँ, फिर वहाँ पे ये हो सकता है कि मसलन है कि औलाद का दर्जा उतना नहीं हुआ जितना माँ बाप का है, तो औलाद नीचे वाले किसी दर्जे में है जन्नत में और माँ बाप ऊँचे दर्जे में, तो वो माँ बाप उस औलाद को अपने दर्जे तक ला सकेंगे, अल्लाह ताला उनको भी ऊपर कर देंगे, इनको नीचे नहीं करेंगे, ऊपर वालों को नीचे नहीं लेकर आएंगे, अल्लाह ताला की रहमत है, नीचे वालों को ऊपर कर देंगे। और इनके पेरेंट्स को भी इसी तरह, और فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا، یہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو پھر جب جنت میں داخل ہو گئے، تم الگ الگ نہیں رہو گے۔ انسان کہتا ہے نا، کوئی چیز اچھی مل بھی جائے، بڑا اچھا گھر مل گیا، بڑا اچھا، آپ کو ہر آپ کی خواہش پوری ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہائے اتنی دور، اب ہم یہاں پہ اتنی دور آ گئے۔ اگر آپ کے بچے دور ہیں یا آپ کے پیرنٹس اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہائے وہ بھی تو آ کے دیکھیں نا، میری یہ نعمتیں دیکھیں، میں کتنی اچھے اس میں رہ رہی ہوں، کاش وہ بھی آ کے دیکھ سکیں۔ دل چاہتا ہے نا، یہ سب سے پہلے اپنے پیاروں کا دل چاہتا ہے، کہ اولاد ہیں یا پیرنٹس ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنی جو کامیابیاں ہیں، اپنی جو خوشیاں ہیں، جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں، جو آپ کو آرام ملا ہے، وہ ان کو دکھائیں اور ان کو بھی اس میں شامل کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، پھر ہی آپ کہتے ہیں کہ خوشی دوبالا ہوگی۔ اکیلے میں تو آپ کو جتنا بھی مل جائے وہ خوشی نہیں ہوتی نا، اسی طرح وہاں پہ جنت میں بھی وہ چاہیں گے نا کہ اکٹھے مل کے رہیں، تو ان کو بھی اونچے درجوں پہ کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اگر تم نے اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے، اور تم بھی نیکی کے راستے پر رہے اور وہ بھی نیکی کے راستے پر رہے۔ تو اس لیے وہ یہ دعا کریں گے، اور یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اپنے لیے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا اس دن۔ وہاں پہ تو وہ کہیں گے ہی، مگر دنیا میں بھی ہمیں مانگنی چاہیے، اور اس چیز کی ہمیں تیاری آگ سے بچنے کی وہاں جا کے نہیں کرنی آگ دیکھ کے، بلکہ یہاں سے کر کے جانی ہے تاکہ ہم بچ سکیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کبھی بھاپ تک ایک ذرے برابر، ایک ذرے سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ میں نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔